ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शासकीय सुधार सरकार की पहली प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न करने की गृहमंत्री रमेश लेखक ने जताई प्रतिबद्धता। नेपाल में उत्पादित बिजली का बांग्लादेश में निर्यात हुआ शुरू। और श्रीलंका में संपन्न संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके के वाम गठबंधन को मिला भारी बहुमत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि जन शिकायतों को संबोधित करते हुए चुस्त सक्षम और पारदर्शी प्रशासन संचालन सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। आज सिंह दरबार में संपन्न राष्ट्रीय विकास समस्या समाधान समिति की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विकास के लिए अनुशासन अपरिहार्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शासकीय सुधार को समिति से होने वाले निर्णयों की कार्यसूची के पहले नंबर में रखा गया है। अजरबैजान के बाकू में हुए जलवायु संबंधी सम्मेलन में वन मंत्रालय के आवश्यकता से अधिक कर्मचारी भेजे होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने ऐसी गलत प्रवृत्तियों से दूर रहने को लेकर मंत्रियों और सचिवों का ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल अजरबैजान के बाकू शहर में इसी कार्तिक 26-31 से शुरू हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि पक्षीय राष्ट्रों के 29वें सम्मेलन में भाग लेकर आज स्वदेश लौटे हैं। नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए इसी कार्तिक 25-31 अजरबैजान पहुंचे राष्ट्रपति पोडेल आज सुबह स्वदेश लौटे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद दे यादव, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, मंत्रियों एवं सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया था। इस दौरान नेपाली सेना की एक इकाई ने सलामी दी थी। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि आने वाले स्थानीय तह उपचुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयरहित माहौल में संपन्न करने के लिए आवश्यक सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज हुई बैठक में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि उपचुनाव के लिए सरकार सुरक्षा का बंदोबस्त कर चुकी है। आगामी मार्गशीर्ष 16 होने जा रहे स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए आज 38 निर्वाचन अधिकृत कार्यालयों की स्थापना की गई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उपनिर्वाचन होने वाले स्थानीय तहों में 32 मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयों और 6 निर्वाचन अधिकृत कार्यालयों की स्थापना की गई है। बता दें कि मार्गशीर्ष 16 रविवार सुबह 7 से दोपहर शाम 5 तक मतदान होगा। नेपाल में उत्पादित 40 बिजली का बांग्लादेश में निर्यात शुरू हुआ है। नेपाल के ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का, भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने संयुक्त रूप में वर्चुअल तौर पर बिजली निर्यात का शुभारंभ किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री खड़का ने कहा कि नेपाल से बांग्लादेश में बिजली निर्यात होना नेपाल के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। दारचूला में आज हुई जीप दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और अन्य 5 लोग घायल हो गए। दारचूला के डीएसपी प्रकाश दाहाल के अनुसार मरने वालों में दारचूला के शैल्य शिखर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 लेक गांव के 30 वर्षीय वीरेंद्र रावल, 28 वर्षीय शांति रावल, शैल्य शिखर वार्ड नंबर 9 के 45 वर्षीय दिलीप विष्ट, बैतड़ी की टीलाशैनी वार्ड नंबर 5 के 15 वर्षीय संजीव बोहरा, शैल्य शिखर वार्ड नंबर 9 गोकुले की 35 वर्षीय मीना लेखक, टीलाशैनी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के वीरेंद्र सिंह बोहरा, भारत उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले के 45 वर्षीय मोहम्मद सफीर और उसी जिले के 18 वर्षीय मोहम्मद वसीम शामिल हैं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को कैलाली के धनगढ़ स्थित निसर्ग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। बता दें कि जीप सड़क से करीब 300 मीटर नीचे खाई में गिरी थी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकॉम राष्ट्र को संचार।
अब बाकी समाचार। द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस ट्वास द्वारा नेपाल के दो वैज्ञानिक पुरस्कृत हुए हैं। ट्वास ने विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ टिस्टा प्रसाद जोशी और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र सह प्राध्यापक विपिन दाहाल को पुरस्कृत किया है। नास्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ प्रसाई ने 4,000 अमेरिकी डॉलर समीरा ओमर इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड प्राप्त की है। वहीं सह प्राध्यापक दाहाल ने 5,000 अमेरिकी डॉलर अट्टा उर रहमान अवार्ड प्राप्त किया है। ट्वास ने नेपाली वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार नेपाल के भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या को हल करने में उनके योगदान के लिए दिया है। इसी तरह सह प्राध्यापक दाहाल को कार्बन क्वांटम डॉट और इसकी संरचना सहित कार्बन नैनो मटेरियल के सिंथेसिस में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस वर्ष ट्वास ने नेपाल के जोशी और दाहाल सहित अन्य विभिन्न देशों के 25 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया है। ट्वास दक्षिण एशियाई वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ताओं को हर साल विभिन्न विधाओं में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को पुरस्कृत करते आया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने दावा किया कि सिर्फ कांग्रेस और एमाले की गठबंधन सरकार ही देश को स्थायित्व दे सकती थी, इसलिए दो बड़े दलों ने हाथ मिलाया है। आज प्रेस यूनियन रेडिलधुरा द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभापति देउवा ने ऐसा दावा किया। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार बदलने और बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष में रहने से राजनीति के अंदर विकृति आई है। उन्होंने आगे कहा कि देश में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट का समाधान करते हुए देश को सही दिशा देने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। नेकपा एमाले मार्गशीर्ष 7 कते को काठमांडू में रैली सहित सभा का आयोजन करने जा रही है। नेकपा एमाले ने कहा है कि वो लोगों के बीच फैलाई जा रही अराजकता और अस्थिरता के भ्रम को दूर करने के लिए काठमांडू में जागरण सभा आयोजित करने जा रही है। एमाले की जागरण सभा आयोजन समिति द्वारा आज पार्टी मुख्यालय चैसल में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि समाज को गुमराह करने के लिए किए जा रहे प्रयास गलत हैं, इसे साबित करने के लिए जागरण सभा का आयोजन किया जा रहा है। एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि वो जनता के बीच जाकर ये संदेश देने जा रहे हैं कि लोग प्रमुख पार्टियों से असंतुष्ट नहीं हैं बल्कि आशावान हैं। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने इस बात पर बल दिया कि ईमानदारी के साथ आत्मसमीक्षा करते हुए समान विचार रखने वाले लोगों के साथ साझा मत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। नेपाल राष्ट्रीय प्राध्यापक संगठन के पूर्व केंद्रीय संयोजक अखिलेश्वर लाल दास के दूसरे स्मृति दिवस कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि आजकल ऐसा आभास होता है कि लोग निजी स्वार्थ पद प्रतिष्ठा से प्रेरित होते जा रहे हैं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री बद्री पांडे ने कांग्रेस के ही सांसद राजेन्द्र बजगाई ने श्रृंखलाबद्ध रूप में उनके विरुद्ध कुप्रचार किए होने के कारण पार्टी केंद्रीय अनुशासन समिति और संसदीय दल में शिकायत दर्ज की है। अनुशासन समिति में कल और संसदीय दल में आज पेश की गई शिकायत पत्र में नेपाली कांग्रेस के महासमिति सदस्य एवं गोरखा जिला क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद एवं पर्यटन व्यवसायी बजगाई द्वारा मंत्री पांडे पर विभिन्न आरोप लगाते हुए सामाजिक संजाल के माध्यम से कुप्रचार किए होने का उल्लेख है। बता दें कि एक कैसीनो को इजाजत देने में भ्रष्टाचार किए होने का संदर्भ बजगाई द्वारा बीते मंगलवार को सामाजिक संजाल पर पोस्ट किए जाने के बाद कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स ने समाचार प्रकाशित किए थे। सहकारी ठगी प्रकरण में अनुसंधान के क्रम में रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को आज भैरहवा से पोखरा ले जाया गया है। बोटवल के सुप्रीम सहकारी की रकम ठगी के आरोप में अनुसंधान के क्रम में रहे लामिछाने को भैरहवा में बयान पूरा होने के बाद आज दोपहर पोखरा ले जाया गया। ये जानकारी कास्की के प्रहरी प्रवक्ता वसंत कुमार शर्मा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के वामपंथी गठबंधन ने देश में चल रहे संसदीय चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर ली है। चुनावों के आधिकारिक नतीजों के मुताबिक राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी गठबंधन ने 159 सीटों के साथ संसद में 2/3 बहुमत हासिल किया है। इससे पहले 22 सितंबर को वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। दिसानायके को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और श्रीलंका को सबसे बुरे आर्थिक दौर से बाहर निकालने के अपने वादे को पूरा करने के लिए स्पष्ट बहुमत की जरूरत थी। श्रीलंका के कई मतदाताओं के लिए जरूरी मुद्दों में से एक बढ़ती महंगाई थी। स्पेन के उत्तर पूर्वी इलाके के जारागोजा के नजदीक एक केयर होम में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। इमरजेंसी सर्विसेज ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि विला फ्रांका डी एब्रो शहर के एक केयर होम में आज सुबह आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस केयर होम में उस समय 82 लोग रह रहे थे। हालांकि अब आग बुझा दी गई है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक ये सेंटर 16 साल पहले रिटायर्ड लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में ये डिमेंशिया और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के केयर होम के तौर पर विकसित हो गया था। मरने वालों की उम्र कितनी थी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। विलाफ्रांका डी एब्रो के मेयर ने बताया कि स्पेनिश रेडियो से बात करते हुए विलाफ्रांका डी एब्रो के मेयर ने बताया कि दो अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह हादसा केयर होम के कमरों में से एक के गद्दे में आग लगने से हुआ होगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शासकीय सुधार सरकार की पहली प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न करने की गृहमंत्री रमेश लेखक ने जताई प्रतिबद्धता। नेपाल में उत्पादित बिजली का बांग्लादेश में निर्यात हुआ शुरू और श्रीलंका में संपन्न संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशानायके के वाम गठबंधन को मिला भारी बहुमत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।